Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया के आर्थिक समाचारों से अवगत कराएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके बी मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा।
Thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices begin financial year on a positive note. Sensex gains nearly 1,200 points. Nifty settles above 22,500. GST collections surge nearly 9% to cross over 2 lakh crore rupees in March this year. And global crude oil prices decline over 2%.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने नए वित्त वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की। सेंसेक्स लगभग 1200 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,500 के पार पहुंचा। इस साल मार्च में जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ, लगभग 9% की बढ़त, और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 2% से ज्यादा की गिरावट।
Well, before we carry on, here's a disclaimer for our friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
जी, और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज नए वित्त वर्ष की सकारात्मक शुरुआत करते हुए देश के शेयर बाजारों के सूचकांक लगभग 1.5% चढ़ गए। सेंसेक्स 1,187 अंक बढ़कर 73,134 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 348 अंक ऊपर 22,679 पर पहुंच गया। इससे पहले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आज बाजार 2.5% की बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार के दौरान ज्यादातर समय ऊंचे स्तर पर कारोबार करते रहे, लेकिन आखिरी घंटों में कुछ मुनाफा वसूली के कारण थोड़ी गिरावट आई।
Well, today being the 1st of April, we begin the financial year and it begins on a positive note. Benchmark domestic equity indices surged by around 1.5%. The Sensex soared 1,187 points to close at 73,134, while Nifty rose 348 points to settle at 22,679. Earlier, markets opened 2.5% higher amid positive global cues. Sensex and Nifty traded higher for most of the session before coming off their intraday highs amid some late session profit booking.
जी, और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही आज। सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले शेयरों पर नजर डालें। ट्रेंड के शेयर 6.7% से अधिक चढ़े, इंडिगो के शेयर 6% ऊपर आ गए और अडानी पोर्ट्स के शेयर्स लगभग 5.5% बढ़े। इसके विपरीत एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर 1.64% गिरे, पावर ग्रिड के शेयर 1.1% से ज्यादा गिरे और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 0.3% नीचे आ गए।
And well, talking about sectors, barring healthcare, which fell 0.2%, all other sectoral indices at the BSE ended in the positive territory. Among the top gainers, services climbed 5%, PSU Bank advanced by nearly 3.7%, and industrials jumped 3.4%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 3,828 companies advanced, 508 declined, and 101 remained unchanged.
और रुपए पर नजर डालें। आज भारतीय मुद्रा बाजार बैंकों की वार्षिक बंदी के कारण बंद रहा, लेकिन छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.46 पर था। तो एकेबी, आपने बाजार का हाल सुन लिया और हमने देखा आज नए साल की बढ़िया सकारात्मक शुरुआत है और वैसे भी दुनिया में हमें कुछ सकारात्मक दिखाई देने लगा है। आज से पूरी दुनिया के बाजार ठीक ठाक लग रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, मेरी टिप्पणी यही है कि ये साल के शुरुआती के लिए नहीं, पर जो ट्रंप साहब का एक ऐलान है और तेलों के दाम की जो ट्रेजेक्टरी है उसके लिए आज मार्केट में जो रिकवरी हुई है
जी।
पर अभी ये रिकवरी अगर मार्च में देखें आप, मार्च में 28 फरवरी के बाद जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से अब तक कल तक करीबन निफ्टी का 11% का लॉस हुआ था
जी, जी।
तो अभी तक जो लॉस, आज की जो रिकवरी हुई है वो 1.6% की रिकवरी हुई है, तो उस लेवल से हम काफी अभी नीचे हैं। तो रिकवरी करना है तो हमें और भी सकारात्मक और भी चीजों को आना पड़ेगा, युद्ध की विरति की घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं आपको एक चीज में इसमें आपका दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि हालांकि पीएसयू बैंक की परफॉर्मेंस के लिए उनकी जो वृद्धि काफी अच्छी हुई है, पर एक सेक्टर की जो वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की तेजी हुई है 5%। तो मैं समझता हूं कि ये डिफेंस सेक्टर की जो तेजी जो है वो ये दर्शाता है कि किस तरह से युद्ध के बाद डिफेंस सेक्टर का और भी रवैया बढ़ जाता है, इसकी डिमांड बढ़ती है। तो जो रिकवरी हुई है, इस रिकवरी के अंदर सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स की, ये बात हमें इसके ऊपर नजर डालना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट की रिकवरी इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, बट डिफेंस की जो रिकवरी हुई है, हालांकि बहुत सारे सेक्टर, ऑटो सेक्टर में रिकवरी हुई है, एक्सेप्ट फार्मा सब सेक्टर में रिकवरी हुई है, पर रिकवरी तब तक ही सस्टेन होगी जब तक ना हम एक स्टेबिलिटी और जो जो युद्ध का जो एक जो माहौल जो है उसमें थोड़ी बहुत कंटेनमेंट आएगी।
व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफेंस सेक्टर मिस्टर भट्टाचार्य, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस वॉज सेंट्रल टू आत्मनिर्भर भारत मिशन, ऑल्दो वी स्प्रेड टू मेनी अदर एरियाज एंड राइटली सो एंड जस्टिफाइड, and the fact that now we are exporting defense equipment to many countries worth thousands of crores of rupees and the aim is to expand to even higher targets, does that also give us a push?
Yes,
in that sector?
Of course, please remember that there are a few private sector listed companies who are in the defense area. Mm-hmm. There are also quite a few public sector defense companies like GRAC, which has done very well in today. Now, when defense sector performs well, it only indicates that the investors have a sense that for them, those companies, defense companies, the opportunity for growing is got better. Investments will flow in. Mm-hmm. And as you rightly pointed out, the government has also invested a lot and paid a lot of attention to these defense sector. There is a new defense procurement strategy. There is an attempt to capture some of the global markets. So the defense sector is an indication, a true indication of what's really happening in the world today.
Yes, it's irrespective of the war, we were still doing good in the defense sector.
Yeah, yeah.
Yes.
And, जो आंकड़ों की बात कर रहे थे हम पहले कि एक महीने पहले से आज हम कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो अगर वैसे देखें तो हम वैसे जनवरी से अभी तक सेंसेक्स 14% नीचे है और एक साल पहले की तुलना में देखें तो लगभग वहां है, लगभग 4.25% उससे भी नीचे हैं हम एक साल पहले के मुकाबले भी। तो एक्चुअली अभी रिकवरी का रास्ता तो काफी लंबा है और ये जो क्षणिक हमें दिख रहा है कुछ सकारात्मक होता हुआ, ये अगर सस्टेन करे तभी शायद उम्मीद है, क्या कहते हैं?
ये आपने एकदम सही कहा कि सस्टेन करेंगे अगर कल सुबह भारतीय समय के अनुसार जो ट्रंप साहब का जो ऐलान होगा उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की जो वहां पे जहाजों की जो गतिविधियां हैं, वहां पे करीबन 160 जहाज निकलती हैं
जी,
इस वक्त 5 या 8 ऐसे जहाज
बहुत मुश्किल से
निकल रहे हैं। तो ये जो तेलों की जो 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 डिमांड जो है वो हर, और ये एशिया के सारे कंट्री उनके लिए ये करीबन 90% जो माल आता है वो हॉर्मोन से आता है एशिया की,
और सबसे ज्यादा चीन प्रभावित हो रहा है,
सबसे ज्यादा चीन प्रभावित हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर जब तक चलेगा तब तक स्टॉक मार्केट में ये हलचल मची रहेगी।
Alright, let's take a look at the sectoral performance over the last year gone by. Not actually, but financial year 26 as we are calling it. We're going to have new terminology now from today onwards. Assessment year, tax year, all that. We'll talk about that later. But as we begin our financial year 2027, let us recap how sectoral indices at the Bombay Stock Exchange performed in financial year 26. We have a report. Let's listen in.
The PSU Bank Index, which surged over 20%, led the chart. It was closely followed by the Metal Index, which rose around 20%, supported by firm commodity trends. The auto sector also posted healthy double-digit gains of over 10%, led by robust festive demand and next-generation GST reforms. In contrast, the worst-hit sectors included realty, which shed over 23%. It was followed by IT, which plunged over 22% amid AI-related concerns. FMCG also registered steep losses of over 13% in fiscal year 2026. Ayush Singh for Market Mantra.
How would you explain this, Mr. Bhattacharya? One would think that FMCG is something which would always, wouldn't show losses because people are always buying stuff.
No, I think this is a very comprehensive and competently captured state of play with regard to the market in the last financial year. If you look at the sectors that have done well, it shows that probably the potential for further growth exists, which is why the market investors, market participants are batting for them, whether it is the PSU banks, because PSU banks have done again very well. Actually, they have done better than the private banks, which is why the PSU bank index has done so well.
Yes.
If you look at the auto sector, they have withstood the challenges of the EV adoption, and many mainline auto companies have embraced that, and the market has received it well. Similarly, you have the AI impact has hit the IT sector very hard. You know, today's news is that Oracle is shedding 30,000 of its staff because they want to save that money and invest in AI. So clearly, the IT sector last year has captured people's imagination in the wrong way, in the sense that IT sector has been the one of the biggest impacted sector. Mm-hmm. So this tells you, and FMCG, the question that you asked, there is a sense that people have become more cautious about such investments which are not essential compulsory investments. FMCG sector is largely composed of discretionary buying. In a sense, people who have one fridge, they will not go in for the second fridge if they feel a little unsure of things. So I think what this story suggests is that there is caution, and yet there is demand for sectors which have embraced technology in the right way, and then there is turmoil in sectors like IT because of AI, which is, we do not know which way it will move.
जी, और एशियाई बाजारों पर नजर डालें, आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांक सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 8.4% से ज्यादा बढ़ा। व्यापार उद्योग और संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च में दक्षिण कोरिया का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 48.3% बढ़ गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर की मजबूत मांग ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। जापान का निक्केई 5.2% से अधिक बढ़ा। हांगकांग का हैंगसेंग 2% ऊपर आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.8% से अधिक बढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट लगभग 1.5% बढ़ा। आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी तेजी देखी जा रही है। समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डैक्स 2.7% से अधिक ऊपर चल रहा था। लंदन के फुटसी और फ्रांस के कैक दोनों में लगभग 2% की बढ़त देखी जा रही थी।
Right. How would you explain this? Let me add also, Mr. Bhattacharya, a report which comes from the UNDP, which says that the ongoing military escalation in West Asia could shrink economies of the region by 3.7 to 6% of the GDP, leading to losses of up to $194 billion. Not a very nice thing to know. Considering the fact that we have about 9 million people in West Asia.
West Asia, absolutely. I think this is not good news. Mm-hmm. But then it's not something that which is situation is completely irrecoverable. If demand comes back, if the war situation comes under control, I would imagine that there will be demand for or reconstruction of the areas, the zones, the regions which were devastated by war. So just as right now we are counting our losses, there will probably be an opportunity to prepare for new investment opportunities, job opportunities in the same areas where there is reconstruction demand.
जी लालिमा, वो अमेरिकी बाजारों का हाल भी बता दे तो हम एशियाई बाजार, यूरोपियन बाजार और अमेरिकी बाजार सब पर बातचीत कर पाएंगे।
श्योर सुबोध जी। वेल, वॉल स्ट्रीट एंडेड यस्टरडे सेशन हायर अमिड होप्स ऑफ डी एस्केलेशन इन वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट। अमंग द मेजर इंडेसेस द नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स सर्ज्ड ओवर 3.8%, द S&P 500 जंप 2.9%, द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रोज 2.5%.
जी, एकेपी हमने अभी जैसा लालिमा ने बताया अमेरिकी बाजार का हाल और उससे पहले एशियाई बाजार के बारे में जो मैं पढ़ रहा था, लगभग सारे सूचकांक ऊपर थे और अभी यूरोपियन ट्रेड भी जो शुरुआती तेजी अब थोड़ी सी तो कम हुई है लेकिन तभी भी ठीक ठाक ऊपर चल रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। एक बात और जोड़ूंगा, अभी जो हम सेक्टर की बात कर रहे थे उस रिपोर्ट की, जो आईटी की बात थी, तो हमारे देश में हम जो देख रहे हैं जो आईटी को जो नुकसान हुआ है वो दक्षिण कोरिया और ताइवान खास करके, ये दोनों, वो एआई से उनके बाजार को बहुत फायदा हुआ है।
देखिए, एकदम आपने सही कहा कि जो जो हमारी जो मार्केट जो है इस वक्त एआई से काफी प्रभावित हुई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में हमारी आईटी कंपनीज किस तरह से इस एआई के चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर से
उसके हिसाब से ढलती है।
और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एआई का जो जो दौर जो चला हुआ है
जी,
वो एआई से जैसे नौकरी जाने की शंका बढ़ती है, उस तरह से विभिन्न तरह की नौकरी
पैदा भी
होती है।
जी, बिल्कुल।
तो ये पूरी को हमने ये इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
जी, और वैसे अभी का जो अगर पूरी दुनिया की सकारात्मक जो हम बातें देख रहे हैं उसमें तो सब कुछ ठीक है, उसके हिसाब से बाजार प्रभावित हो रहे हैं। क्या कुछ और भी फैक्टर्स हैं कि एशिया के बाजार हमसे, भारत के बाजारों से ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं?
देखिए मुझे ये लग रहा है कि जो जो ट्रेंड को अगर देखेंगे आप
जी,
तो सारे एशियन बाजार और जो भारत का जो बाजार जो है उसकी दिशा एक ही है
जी।
पर हाँ, इस वक्त ये लग रहा है कि एशियन बाजार की जो रिकवरी की जो स्टाइल जो है, जो गति जो है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है
जी।
पर इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो तेल के ऊपर जो जो आयात के ऊपर निर्भरता जो है
जी,
वो सबसे ज्यादा है। करीबन 90% की हमारी आयात के ऊपर निर्भरता है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी देश की जो जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है वो में हम ज्यादा भारत के मार्केट को ज्यादा करती है, और नौकरी का भी जो काटने का जो डर लगता है जैसे ओरेकल कंपनी का,
हाँ,
तो वो भी
एक
भारत
साथ
में
हजारों को उन्होंने निकाला है।
ग्लोबली वो 30,000 लोगों को काट रहे हैं
जी।
पर किस तरह से जो वार सिचुएशन और स्टॉक मार्केट टोटली फोकस्ड है वॉर सिचुएशन में, उसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी कैमरून में एक वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, पर उसमें कोई ज्यादा डिक्लेरेशन नहीं आई है। तो बहुत सारे कम ऐसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होते हैं WTO में जिनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है, पर उसके बावजूद स्टॉक मार्केट विश्व में उसकी ओर नहीं देख रहा है, वो सब अब युद्ध की ओर देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में देख रहे हैं। तो ये भी एक तात्पर्य है कि वेस्ट एशिया वॉर जो है वो बहुत इतना इम्पोर्टेंस है कि कैमरून में WTO का बैठक हुआ उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, उसके ऊपर वो चिंतित नहीं है, वो चिंतित है वेस्ट एशिया के युद्ध के ऊपर।
बिकॉज इट हैज द ऑयल, ऑल राइट। वेल, वी हैव द न्यू फाइनेंशियल ईयर टुडे, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, एंड टुडे अ सेट ऑफ रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग की फाइनेंशियल रूल्स रूल चेंजेस हैव कम इनटू फोर्स। ओवर 6-decade ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 फ्रॉम टुडे। इट इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम बाय रिमूविंग आउटडेटेड प्रोविजंस, streamlining complex rules and making compliance more straightforward for taxpayers. Mr. Bhattacharya, very important for the common man to know how this new Income Tax Act 2025 would make a difference. I know one major difference, as I mentioned, was the nomenclature. No financial year, no assessment year, just the tax year. And then we have these various forms,
well,
15G,
like,
15H.
Like, you know, Form 16 will become 130, Form 16A will become 131A. There is the TCS, the tax collected at source for credit card payments, will come down to 2%. So there are quite a few, and similarly, the securities transaction tax will go up if you are going in for derivatives trading.
Mm-hmm.
So there are quite a few changes that will come into play. But by and large, as you rightly pointed out, these are compliance related and it will improve the ease of paying tax for most individuals.
जी, अगली खबर जीएसटी संग्रह की है। इस वर्ष मार्च में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.8% बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मार्च 2025 में कुल जीएसटी राजस्व 1,83,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक था। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सकल जीएसटी राजस्व बढ़कर 22,00,000 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष के 20,00,000 करोड़ रुपए से 8.3% अधिक है। ये जीएसटी संग्रह के आंकड़े ही एक ऐसी चीज नजर आते हैं मुझे जो लगातार हमेशा देखता हूं बढ़ रहे हैं।
हाँ, एकदम आपने सही कहा। पर विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये जीएसटी को कलेक्शन की जो बढ़ने की दर जो है ये थोड़ी और भी ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट जो है वो अगर 7% के ऊपर जानी चाहिए तो जीएसटी कलेक्शन में भी इसकी जो, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन रेट नॉमिनल ग्रोथ रेट है
जी, क्योंकि
वो हमें और भी आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि जो सितंबर में जो रेट कट हुई थी
उसका
प्रभाव थोड़ा
असर दिख रहा है, कंप्लायंस तो बढ़ा है,
कंप्लायंस बढ़ा है, जो फैसिलिटीज जो प्रोसीडियर्स जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। पर मुझे लग रहा है कि अगले साल से अगर युद्ध का जो प्रभाव आस्ते आस्ते कम होगा, मुझे लगता है कि जीएसटी कलेक्शन की रेट आगे बढ़नी चाहिए।
All right. The Reserve Bank of India has extended the enhanced export credit period of up to 450 days for pre-shipment and post-shipment finance till 30th June 2026. The relief introduced earlier amid global trade disruptions has been continued due to ongoing logistical challenges linked to the West Asia crisis. The central bank also confirmed that the extended timeline of 15 months for realization of export proceeds will remain in force. And in another development, RBI said the supervisory data quality index of scheduled commercial banks improved marginally to 90.9 in December 2025. Quarter from 90.7 in July-September period.
जी
and
और
जी
पश्चिम जी हाँ एलपीजी की कीमतों में आज जो कमर्शियल गैस है वो उसके सिलेंडर्स बढ़ गए हैं उसकी कीमत बढ़ गई है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रुपए की वृद्धि की है. सरकार ने साफ किया है कि उद्योगों और होटलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें नियंत्रण मुक्त हैं और बाजार द्वारा निर्धारित हैं तथा अधिकतर मासिक आधार पर संशोधित की जाती हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि सऊदी अनुबंध मूल्य में 44% की वृद्धि के कारण हुई है क्योंकि वैश्विक एलपीजी आपूर्ति का 20-30% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसा हुआ है.
And moving on, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu has hailed the decision to implement only a partial and staggered increase of 15 rupees per litre for aviation turbine fuel, ATF as we call it, for domestic airlines. In a social media post, the minister said the move is pragmatic and forward-looking and ensures that foreign routes bear full market-aligned price. Mr. Naidu said that the calibrated approach will help shield passengers from sharp fare increases, ease the burden on domestic airlines and support the continued stability of the aviation sector at this crucial juncture.
Ji, ye kafi aham khabar hai aur puri duniya ko
provide. I think it is a decision because what's happening is that a lot of international airlines, what they do is this, when they fly, they take advantage of modest ATF prices that operate in India. Mm-hmm. So they will park their aircraft and refill their tanks. So this is a decision that will not only help the national exchequer's coffers, but also will ensure that the easy prices or the modest prices that prevail here should not necessarily finance the bottom line of international airlines. It should, if at all, should benefit only the Indian airlines. So I think it's a good decision. Mm-hmm. And since they are market aligned prices, let them be market aligned.
Right. All right, let's take a look at the crude oil prices now. Global crude oil prices fell today as uncertainty over the situation in West Asia kept investors on the edge, while U.S. President Donald Trump reiterated that the conflict could be nearing an end. Brent crude was trading 2.6% down at $101.28 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading over 2.7% lower at $98.60 per barrel when reports last came in. And moving on, look at the Indian bullion market, where 24-carat gold was trading 1.4% up at 1,53,020 rupees per 10 grams, while silver was trading flat at 2,42,310 rupees per kilogram a short while ago.
और एमसीएक्स में ताजा समाचार मिलने तक जून अनुबंध वाला सोना लगभग 1.5% की बढ़त के साथ 1,52,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मई अनुबंध वाली चांदी भी लगभग 0.3% की वृद्धि के साथ 2,41,540 रुपए प्रति किलो पर थी. सोने चांदी में थोड़ी थोड़ी चमक दिख
रही है. चमक दिख रही है क्योंकि मार्केट की जो सुधार से साथ ही संपर्कित है और वही हम देखने को मिल रहा है हमें.
जी एकेबी कार्यक्रम में आने और सभी खबरों पर गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद. नमस्कार.
थैंक्स मिस्टर भट्टाचार्य. एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस बिगिन फाइनेंशियल ईयर ऑन अ पॉजिटिव नोट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 1200 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 22,500. GST collection surge nearly 9% to cross over 2 lakh crore rupees in March this year, and global crude oil prices decline over 2%. Well, that's all we have for you friends in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.